वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
जय, परम पूज्य मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुंडा श्री भक्त सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय।
हम सभी लोग कर्मों के बारे में विचार कर रहे हैं। एक विचार हमारे मन में जो हमेशा से रहता है सामान्य रूप से, कि जो कर्म हम करते हैं या जो कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। और ये जो विचार है वो गलत विचार नहीं है, ठीक है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ उनका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, मैंने जो कर्म पहले किए हैं उनका फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं ऐसे ही कर्म का फल भोगने में भी स्वतंत्र हूं। कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा ये जितना निश्चित है, उतना ही ये भी निश्चित है कि मैं जैसा भोगना चाहूंगा वैसा भोगूंगा। बस ये बात बहुत साहस से नहीं कह पाते हम, ये तो हम कह लेते हैं बहुत साहस से कि अपने किए गए कर्म को मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन अब उतने ही साहस से ये भी कह सकें कि जैसा मैं भोगना चाहूंगा वैसा भोग सकता हूं। अभी तो ये लगता है कि जैसा कर्म का उदय आएगा मेरी मजबूरी है कि मुझे वैसे ही भोगना पड़े। लेकिन अब इतने दिनों बाद थोड़ा साहस तो जागना चाहिए आत्मा में। जिस आत्मा की अनंत शक्ति है उस आत्मा की उस अनंत शक्ति का थोड़ा तो जागरण होना चाहिए कि नहीं, कर्म बड़े नहीं हैं, कर्म बांधने वाला मैं बड़ा हूं। अभी तो ये स्थिति है कि मैं कर्म के चलाए चलता हूं, ऐसे जैसे कि एक व्यक्ति गधे पर बैठा चला जा रहा था और गधे का मुंह जिस तरफ है उसने ठीक उल्टी तरफ अपना मुंह कर रखा था। हाँ, तो लोगों ने कहा कि क्या करते हो, मजाक करते हो, गधे की दिशा उस तरफ है मुंह की और तुम्हारी इस तरफ की, कि ले जिंदगी हो गई, मैंने इसको जब कहा कि ऐसे चल तो मैं जैसा कहता हूं ये उससे उल्टा ही चलता, सो कहले हम ही उल्टी बैठ गए, तो मैं जहां चल रहे हूं उतने हम तुम्हारे हिसाब से चले। ये एक तरह का जोक है, एक तरह की हमारे ऊपर व्रंग व्यंग है कि हम अपने कर्मों के चलाए, हम अपने इंद्रिय और मन के चलाए चलते हैं, वे हमारे साथ मनमानी करते हैं और हम जो है अपने उन इंद्रिय और मन के वशीभूत, अपने कर्मों के वशीभूत होकर के और चले चले जाते हैं। नहीं, अब हमें सीख लेना चाहिए कि जो कर्म हम बांध रहे हैं जो हमने बांध लिए हैं या जो कर्म हमारे भोगने में आ रहे हैं उन सब पे हमारा बहुत वश है। ये हमारी पुरुषार्थहीनता है। अभी मैं बैठे बैठे बीच बीच में और महाराज सुना रहे थे रावण के बारे में। रावण बहुत विद्वान था, सम्यक दृष्टि था। सबसे बड़ी चीज तो ये है, जिसकी दृष्टि निर्मल थी, जिसका ज्ञान निर्मल था, जिसके आचरण भी था, जिसने व्रत लिया था। बताइए आप, इस सब के बावजूद भी मैं तो उसको कर्मों की प्रबलता ही ना मानूंगा, उसके साथ साथ पुरुषार्थ की कमी भी मानूंगा। अरे जो व्यक्ति बहुरूपनी विद्या शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ के कह सकता है कि शांतिनाथ है नमः, लेकिन रामस मृत्युर भवेत, एक तरफ पुरुषार्थ कर रहा है कि शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है, दूसरी तरफ कहता कि मेरा इंटेंशन क्या है, राम की मृत्यु हो, लेकिन वो ये भूल जाता है कि किसी के कोसने से और किसी के चाहने से किसी की मृत्यु तो नहीं होती कम से कम। ये क्या चीज है, ये तो मैं पुरुषार्थहीनता मानूंगा। इसमें कोई कर्म का उदय नहीं था, शांतिनाथ भगवान की जय बोलने के लिए कोई कर्म का उदय नहीं चाहिए। हाँ, शांतिनाथ भगवान की जय ने बोल पाओ एक ही लाने कर्म को उदय हो सकत, कर्म बाधा डाल सकता है, आराधना में बाधा डाल सकता, लेकिन आराधना करवावे ऐसा कोई कर्म नहीं है। पाप में बाधा डाल सकता है लेकिन पाप करवावे ऐसा कोई कर्म नहीं। पुण्य में बाधा डाल सकता, पुण्य करवावे ऐसा कोई कर्म नहीं। लेकिन क्या करें, एक पैटर्न बन गया है अपन का कि जो चीज आई सो सब कर्म के मत्थे डाल दी, कि क्या करें हमारे कर्म का। अब रावण के ऐसे कौन सा कर्म का उदय था कि जो बहुरूपनी विद्या सिद्ध कर रहे तुम भैया उपद्रव कर रहे, कौन से पाप कर्म के उदय में, और पाप कर्म का उदय था तो बहुरूपनी विद्या कैसे सिद्ध हो गई। कहते हैं कि अगर जितनी तपस्या विद्याओं के सिद्ध करने में करता था रावण, अगर उसका इंटेंशन अच्छा होता तो उतनी तपस्या से उसी भाव से मोक्ष हो जाता उसका, उतनी ही तपस्या से। इससे क्या लेना अपन को। रोता है रावण कि मैं कहां फंस गया, दे दूं, बिल्कुल यही लिखा पद्म पुराण में, जैसा महाराज मैं कह रहा था, महाराज से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही लिखा हुआ। वो कहता है कि मैं कैसे दे दूं अब, एक तरफ मेरी इंसल्ट होने वाली है कि चार लोग कहेंगे कि जब दे नहीं हती तो छीनी काय हती, तो दे कैसे दे दूं, और रखता हूं तो दिक्कत है। लेकिन मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत, सब कुछ करवा लेता है। एकमात्र मान कषाय का अगर उदाहरण देखना है, आज अपन पढ़ेंगे यही बात समझेंगे कि ये मोहनी कर्म जो है वो कैसे बंधता है, मेरे कौन से परिणामों से, और मुझे ये दर्शन मोह और चारित्र मोह की प्रकृतियां बंधती हैं, और जब वे उदय में आती हैं तो मेरे परिणाम किस तरह के करती हैं। क्योंकि ध्यान रखना, सात कर्म उतने ज्यादा तकलीफदायक नहीं है जितना कि मोहनी कर्म। जैसे एक लड्डू बना हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा मिल रहा हो, तो भैया जितनों मिल जाए उतने को स्वाद तो आओ कम से कम, थोड़ो थोड़ो भलो ही मिलो। लेकिन एक लड्डू पूरो मिल रहा हो लेकिन उसमें विष मिलो हो तो का काम को वो पूरा लड्डू, पेट तो भर जे मनो मर सोई जो। ज्ञानावरण दर्शनावरण में तो थोड़ा थोड़ा आवरण है, सो हमें थोड़ा ज्ञान है, भैया चलो उतना ही में काम चला लेंगे, नहीं मिला पूरा ज्ञान। लेकिन मोह तो ऐसा है जैसे कि लड्डू तो पूरो मिल गया मनो बिस मिलो है। सारे हमारे दृष्टि को, हमारे आचरण को विकारी बनाने वाला मोह है, हमारी दृष्टि को मिथ्या बनाने वाला मोह है, हमारे आचरण को मिथ्या बनाने वाला मोह है, उसके निमित्त से बनाने वाले से मेरा मतलब है निमित्त लेना आपका। उस कर्म के निमित्त से मेरे अंदर विकृतियां आती हैं, मैं फिर भी अपना पुरुषार्थ करूं तो उन विकृतियों से बच सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर विकृतियां उत्पन्न करने वाला सबसे जबरदस्त अगर कोई है तो वो मेरा अपना मोह है, मेरी अपनी आसक्ति है। जब अभिमन्यु नहीं रहते हैं तब श्री कृष्ण समझाते हैं द्रौपदी को, तुम्हारा बेटा था मैंने माना, अब नहीं है ये भी मैं मानता हूं, इसमें दुखी होने की क्या बात है। तो कहती कि आप कैसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं मुझसे नारायण होकर के। कहते हाँ ठीक कह रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि और जो बेटे मरे हैं उनके लिए भी उतने ही दुखी हो जितनी अभिमन्यु के लिए। तो द्रौपदी कहती कि ऐसे कैसे, वो मेरा बेटा था। तो कहते मेरे बेटे की वजह से दुख है या किसी के मरने की वजह से दुख। बहुत मुश्किल में पड़ गई थी द्रौपदी, महापुरुष हैं ये सब, ये सोचते हैं, विचारवान लोग हैं, ये जल्दी से व्यथित हो जाते हैं लेकिन संभल भी जाते हैं। आंख खुल जाती द्रौपदी की कि ठीक कह रहे, मेरा दुख अभिमन्यु के मरने से नहीं है, मेरी आसक्ति की वजह से है मेरा दुख। तुरंत डिफाइन करती हैं वो कि मेरी आसक्ति मुझे दुख दे रही है, अभिमन्यु के प्रति जितनी आसक्ति वो मुझे दुख दे रही है। अभिमन्यु जैसे और बहुत मरे हैं उस सेना में, तो उसके मरने का दुख नहीं है, मेरी आसक्ति उसके प्रति है। जितना मेरी आसक्ति, जितना मेरा मोह है वो मुझे उतना ज्यादा दुख देता है। बताइएगा आप इसमें मैं अपनी कमजोरी मानूं या कि अपने कर्म की, अब निर्णय अपन को करना है। मेरी अपनी आसक्ति मुझे दुख दे रही है, मेरा कर्म मुझे दुख दे रहा है, बताओ आप ही बताओ। चलो बैठे हैं अपन सब जने, बताइए आप। और हम क्या सोचते हैं फौरन के क्या करें, हमारा कर्म कोदय है, हमने खोटे कर्म करे सो को फल मिल रहा। खोटे कर्म हमने करे वो ठीक है, लेकिन खोटे कर्म करने के बावजूद भी वे कर्म हम पे अपना फल लाद नहीं सकते जब तक कि हम उसमें आसक्त नहीं हो। ये बात जो है जैसे बने भैया तैसे अपन के समझ में आनी चाहिए, और ये भी समझ में आना चाहिए कि जब जब अपने को अवसर मिले तो भले कर्म करने से चूकना नहीं, भले कर्म कल कर लेंगे, ऐसा कभी भी भले कर्मों को पोस्टपोन नहीं करना। अगर हमें अपने जीवन को वाकई अच्छा बनाना है, जब जब भी अवसर मिल जाए, जहां से अवसर मिल जाए अवसर खोजते रहना चाहिए कि ये भले कर्म करने का अवसर आज मिल गया। आज कौन सी तिथि है, आज तो फलानी तिथि, और आज कौन से, आज क्या क्या हुआ था, आज फलाने भगवान का गर्भ कल्याणक था, आज फलाने भगवान का जन्म कल्याणक था, चलो कछु तो कर लो आज। आज ये दिन है, आज वो दिन है, 365 दिन ऐसे निकल आवें कि सब प्रकार से भले हैं, आज तो इस प्रकार का दिन है, आज तो इस प्रकार का दिन है। और ऐसा करके हम चाहें तो उन 365 दिनों में और अवसर ढूंढ सकते हैं भला करने का, और बुरे को पोस्टपोन करते जाएं, कल कर लेंगे अब, और जिंदगी तो निकल गई, झूठ बोला तब कल बोलें, आज तो नहीं बोले, संजा को बोल लें अच्छा चलो। ऐसा अगर हमारे मन में, भले ही हमसे फिर झूठ निकल जाए पर हमारे मन में तो ये भाव आए कि मुझे बोलना ना पड़े, मुझे हिंसा करनी ना पड़े, मेरी मजबूरी में मुझसे हो जाए तो हो जाए लेकिन मैं नहीं करूंगा, मुझे कषाय न करनी पड़े, मेरे से हो जाए तो हो जाए। बताइए, मैंने झूठ बोला है लेकिन मैं झूठा नहीं हूं, मैंने गुस्सा किया है लेकिन मेरा स्वभाव गुस्सा करने का नहीं है। ये अनुभूति हमारे भीतर बनी रहे, फिर देखिए इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसमें कोई कर्म वर्म का उदय नहीं चले, यही हमारा पुरुषार्थ। कर्म का चाहे कितना भी प्रबल उदय क्यों ना हो, लेकिन इतने पुरुषार्थ के लिए अगर हमारी सजगता है, हमारा अभ्यास है, दूसरी चीज है अभ्यास। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका अभ्यास बहुत प्रबल होने से वे हमारे अनचाहे हो जाती, अपन ने इसके उदाहरण कई पड़े हुए हैं। अपन जब गाड़ी चलाने में माहिर हो जाते हैं तो कितनी टर्निंग आई और कहां से अपन ने बात करते करते गाड़ी मोड़ लेते हैं, अपन जूते के बंद बांधते हैं और बात करते रहते हैं और देखते नहीं, और सो छोटे बच्चा बांधे अगर तो वो देख देख के बांध के कैसे बांधना चाहिए। अपन दो दो चार चार काम एक संग कर लेते हैं और पता ही नहीं लगता, ये क्या है, ये हमारा अभ्यास है। ऐसे ही अपन भले कामों का अभ्यास डालते जाएं और भले काम को कभी भी पोस्टपोन ना करें। आज दो चीजें अपन को समझनी है कि कैसे हम जो हमारे पाप का उदय आता है तो कमजोर होकर के उससे प्रभावित हो जाते हैं, उदय से जो जितना प्रभावित होगा वो उतने नए कर्म बांधेगा, और उदय से वही प्रभावित होता है जो जितना आशक्त होता है। बस इतना सा क्लू है, कहना चाहिए कर्म फिलॉसफी का क्लू है, उसकी चाबी है। अब ये बात अलग है कि अपन कब उसको अपने जीवन में ला पाएंगे, समझ तो अपन ले आज बैठे हैं तो रोज समझ रहे हैं, पर जीवन में जिस दिन आ जाएगा उस दिन वाकई समझ में आएगा कि हाँ है तो ऐसे। ये दो सूत्र हैं मोहनी कर्म को लेकर, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य उपकषायो दयात तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ऐसे मोहनी के दो भेद हैं और दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं। बस याद भर रखना थोड़ा सा, इनका परिवार 28 लोगों का है, ये पूरी फैमिली मेंबर्स इनके 28 है। हाँ बड़ा परिवार है, वैसे नाम कर्म से तो छोटा ही है, नाम कर्म का तो 93 लोगों का परिवार है पूरा का पूरा। वे सब मिल करके अपन को अलग अलग तरह से प्रेरित करते कि ऐसो करो ऐसा करो, और अपन उनकी मान लेते हैं सो फंस जाते हैं, और अपन जिस दिन उनकी मानना छोड़ देवे उस दिन अपन अपने हाथ में है सारा मामला। इतना ही है कर्मों के साथ। तो उसमें से तीन है, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात। एक ऐसा कर्म है जिसके निमित्त से हमारे अंदर अश्रद्धा पैदा होती है, का धरो ये सब में, का धरो इन बातों में, का धरो भगवान में, का धरो महाराज की बातों में। ऐसा हमारे भीतर अश्रद्धान पैदा करने वाला एक निमित्त कर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमें मजबूर ही करे, हम प्रभावित हो जाएं तो हो जाएं, नहीं तो हम फौरन उस विचार को झटक दें कि अरे ऐसे कैसे, हमारा कल्याण करते हैं वो, हमारा कल्याण है उसमें, हम जाएंगे मंदिर जाएंगे। कर्म का तो बहुत तीव्र उदय है, कर्म कह रहे कि नहीं जाने देंगे, हम तो जाएंगे, मन नहीं लगेगा हाँ नहीं लगने दो, वहां जाकर के गलत सलत विचार आएंगे हाँ आने दो, बैठे हम भगवान के सामने और लग रहा हो कि काय के भगवान उठा के फेंक दी बाहर। कर्म का तीव्र उदय है, हो सकता है मन में ऐसा विचार आ सकता है, लेकिन बैठे हैं भगवान के सामने, और भगवान के सामने बैठे होने वाले का कर्म इतना तीव्र नहीं हो सकता है कि वो कुछ और उपद्रव कर सके, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाए। और सम्यक प्रकृति जब उदय में आती है तो हमारे अंदर श्रद्धान जागृत होता है, 2 महीना निकल गए हम आज तक नहीं गए, अरे चलो आज, ये कौन खबर करवाता है, लेकिन एक ही बात भी जाने नहीं जाने जो हमारे हाथ में है। हाँ 2-2.5 महीने से सुन रहे हैं कि आए हैं महाराज, हम तो अभी तक गए ही नहीं, हमारी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ था क्या, आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चलें, लेकिन उसी बीच और दूसरे काम आ गए, अब रेन दो फिर जे हैं, और पुरुषार्थ करके आ जाते तो कोई कर्म बीच में बाधक नहीं बनने वाला था। मैं बहुत छोटे छोटे से उदाहरण से आपको ये बात कहना चाहूं, यही तो सम्यक प्रकृति और मिथ्यात प्रकृति है। और सम्यक मिथ्यात्व ऐसा है कि क्षण भर को श्रद्धा होती, क्षण भर को अश्रद्धा होती है, ढुलमुल ढुलमुल काम चलता रहता है, जैसे गुण और दही का खट्टा मीठा स्वाद आता है वैसे ही श्रद्धा और अश्रद्धा, वो सम्यक मिथ्यात्व। ये बंधते कैसे, ये जो मुझे आज श्रद्धा अश्रद्धा करवा रहे हैं, ये कर्म मैंने कभी बांधे थे सो बंधते कैसे, ये मालूम कर ले मैं। और जब ये उदय में आते हैं हमने समझ ही लिया कि पुरुषार्थ कैसे किया जाता है, मिथ्यात्व के भारी उदय में भी हमने तो पुरुषार्थ करके मंदिर में आके बैठ गए, हम तो करो का करना रव आए मिथ्यात्व को उदय, हमारी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है कि ये भगवान बैठे और कपड़ा लो नहीं पहरे, शर्म नहीं लगा। मिथ्यात्व के उदय में ऐसा विचार आ रहा है, मैं आपको वैसी भाषा बोल रहा हूं, ऐसा विचार आ सकता है मिथ्यात् के उदय में, लेकिन फिर भी बैठे हम उन्हीं के चरणों में, कहीं नहीं। तो ये तीनों कर्म जब हमने अज्ञानतावश बांध लिए थे, बंधता एक ही है, बांधते हम एक ही हैं, वो फिर बाद में डिवाइड होकर तीन हो जाते हैं। जरा प्रक्रिया कठिन है इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि कैसे कैसे होते हैं, कैसे बदलती है। एक ही दर्शन मोहिनी की प्रकृति वो तीन में डिवाइड हो जाती है, जब हमारे परिणाम निर्मलता आती है तब उसमें से फिर दो को हम दबा देते हैं, एक को उदय में लाते हैं और बड़े प्रेम से अपनी श्रद्धा को मेंटेन करते रहते हैं। ये प्रक्रिया है, अब वो टेक्निकली नहीं बताऊंगा मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऐसे सहज रूप से समझ लो आप। अब इनको हम बांधते कैसे हैं देखना मजा क्या है। अपन की आदत पड़ जाती है दूसरे के निंदा करने की, अब ये आदत अपने लिए कितनी खतरनाक हो जाती है। दूसरे की निंदा में स्वाद आता है अपने को भला साबित करने का, बात ये है और कुछ नहीं। मैं अपन को कहूं कि निंदा से कछु मतलब आए, लेकिन अपने लिए एक स्वाद मिलता है कि अपन तो भले हैं कि नहीं, बे ऐसे हैं, बे ऐसे हैं, बे ऊंचे हैं, अपन अच्छे। सिर्फ इतनी सी बात से निंदा का स्वाद, लेकिन उसका अभ्यास इतना तगड़ा हो जाता है निंदा का कि फिर जिसके अंदर जो दोष नहीं है उन महापुरुषों में भी बेदोष हम अनायास लगाने लगते हैं। इसी को कहते अवर्णवाद, और इस अवर्णवाद की वजह से ये दर्शन मोहिनी कर बनता है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ये कर्म मैंने अपने कौन से परिणाम से बांधा है जो मेरे भीतर अश्रद्धा पैदा कर रहा है, मेरी दृष्टि को विकारी बना रहा है, मेरी दृष्टि को निर्मल नहीं होने दे रहा। ये कौन सा कर्म है जो मैंने कौन से भाव से बांधा, ये समझ लें अपन। इसी भाव से बांधा, केवली भगवान सारे लोक को जानते हैं और अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, उनको भूख प्यास तो लगती नहीं है, लेकिन मैं उन पर ऐसा दोष लगा दूं कि केवली भगवान को भी भोजन करना पड़ता है। तो ये केवली भगवान के बारे में अवर्णवाद ही तो कहलाएगा। मिथ्या दोष लगाना, पूज्य पुरुषों में मिथ्या दोष लगा देना, यह कहलाता अवर्णवाद। और इसकी वजह से क्या होता, हमारी दृष्टि विकृत हो जाती है, फिर हमारी दृष्टि पे ऐसा आवरण छा जाता है कि हम सच्चाई नहीं जान पाते, क्योंकि हमने सच्चाई जाने बिना सच्चे व्यक्ति को झूठा कहा। ये जो चीज है वो हमारे भीतर इतनी प्रबल होके बैठ जाती, इसलिए बहुत डर के चलना भैया। किसी का दोष मालूम भी पड़ जाए तो उसकी निंदा नहीं करना, जो दोष नहीं है उनकी तो करना ही नहीं, जो दोष है उनकी तक नहीं करना। नहीं तो एक बार अगर ये आदत बन गई तो महापुरुषों में अगर हमारे मन में तक विचार आ गया कि अरे ऐसा झूठा विचार भी आ गया, तो हमारे मिथ्यात्व का कर्म जो कि अनंत संसार दिलाने वाला सबसे खतरनाक कर्म है, चारित्र मोहिनी कर्म से खतरनाक दर्शन मोहिनी कर्म। आज हम सब अगर इस संसार में भटक रहे हैं तो उस कर्म के निमित्त से भटक रहे हैं, जो हमने अपने परिणामों से उस कर्म को बांधा है उसी कर्म के निमित्त से अब हम इतने अधिक प्रभावित होकर के और अपना संसार बढ़ाते ही चले जाते हैं। संसार बढ़ाने में, संसार में रोके रखने में एक ही कर्म। इसलिए बार बार आती बात कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना संसार से पार नहीं हो सकते, और ये सम्यक दर्शन में बाधा डालने वाला कर्म है दर्शन मोहिनी। केवली श्रुत गणधर आदि के द्वारा जो श्रुत का प्ररूपण किया, आचार्य भगवंतों के द्वारा जो तीर्थंकर की वाणी का प्ररूपण किया है, उस तीर्थंकर की वाणी के बारे में ऐसा दोष लगा देना कि अरे इसमें तो हिंसा आदि के लिए भी ठीक माना है, जबकि हिंसा इत्यादि करना ठीक नहीं है, लेकिन मांस भक्षण आदि अनवद्या ना अवद्या इति अभिधानम श्रुतावर्णवादा। शास्त्रों में लिखा है मांस खा सकते हैं, बिल्कुल निर्दोष है, ऐसी व्याख्या कर देना या कि ऐसा शास्त्रों के बारे में दोष लगा देना, किसी धर्म के ग्रंथ में यह लिखा ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, श्रुत में ऐसा कहा है भगवान ने कि मांस खा सकते हैं और पांचों पाप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बताइए हैं ऐसे लोग, कुछ नहीं होता इससे, लिखी कहां लिखी कि आलू ने खाओ चाहिए, ग्रंथों में सब झूठी लिखी है खाओ चाहिए। अरे भैया अपन खाते हैं तो जा कहो कि लिखी तो है कि न खाओ चाहिए, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम खाते हैं, जा कहे में क्या दिक्कत है, नहीं उसमें तो लिखी है खा सकते, अच्छा और नहीं जा कहां लिखी कि नहीं खा सकत, वो समय तो आलू होते ही नहीं जी, तो 400 साल पहले ही आए हैं अमेरिका से। अरे बहुत बहुत लॉजिक है लोगों के पास, हमने बहुत पढ़ी ये वाले लॉजिक वॉजिक कि 400 साल उसके पहले तो था ही नहीं, तो धर्म ग्रंथों में आया कहां से आलू, उनको तो मालूम ही नहीं था तो कहां से, और ब्रेड तो उसमें बनती नहीं थी, और आप आज कह रहे कि कौन से ग्रंथ में लिखी कि ब्रेड नहीं खाना चाहिए। भैया धर्म ग्रंथों के बारे में ऐसा विचार न करना, ये खोटा विचार है, इससे हमारी दृष्टि मलिन होएगी, ये निश्चित है। धर्म ग्रंथों में अहिंसा लिखी है, सो जिन जिन बातों में हिंसा है समझना कि वे सब धर्म ग्रंथों से बाहर की बात है। अब वो हिंसा किस माध्यम से, आपके ब्रेड के माध्यम से हो रही सो, और आलू के माध्यम से हो रही सो, चाहे अब में ब्रेड लिखी हो चाहे न लिखी हो, पर हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा का निषेध तो किया, और आप हिंसा का पोषण कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हिंसा की जा सकती। कोई कोई लोग कहते हैं कि यज्ञ में हिंसा की जा सकती, बताइए। कोई कोई कहते हैं कि यज्ञ में जो है पशुओं को जला करके और उनका जो मांस है वो तो वैलिड है, वो तो खा सकते हैं, वो तो पवित्र हो गया, बताइए आप ये क्या है। इससे दृष्टि मलिन होती है, सावधानी रखना पड़ेगी। ग्रंथों का हवाला देकर के और अपनी इंद्रिय की लोलुपता की पूर्ति नहीं करना, ऐसा ही होता है। हम जो करते हैं उसको ग्रंथ का हवाला देके ठीक साबित कर लेते हैं और आराम से करते चले जाते हैं, ये हमारी दृष्टि को मलिन करने वाला कर्म है। इससे हमारे संस्कार मलिन होंगे। केवली शुद्ध संघ, संघ किसे कहते हैं, रत्नत्रय उपेता श्रवण गणा संघा, जो रत्नत्रय को धारण करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त मुनिजन हैं उनके ग्रुप को संघ कहते हैं, जिसमें चार प्रकार का संघ कहा गया, मुनियारी का, श्रावक, श्राविक का। आप भी उस संघ के मेंबर हैं, ये ध्यान रखिए, अकेले मुनियारी का ही नहीं है, श्रावक श्राविक का भी उस चतुर्विध संघ में है। उस चतुर्विध संघ पर झूठा दोष लगा देना कैसा, तो इसमें कह रहे हैं शूद्रत्व असुचित्व आविर्भावनम संघावरणवादो। अरे ये तो सब बड़े मलिन होते हैं, देखो नहा तक नहीं है इनके महाराज, अपवित्र हैं, उनके आयुष्नान व्रत है, ये नहीं कहेंगे कि स्नान नहीं करने का जीवन भर का नियम है, लेकिन उल्टा ये कहेंगे कि ये तो शूद्र हैं, हाँ, और बड़े गंदे रहते हैं, इतना ही तो दुख भोग रहे, आगे का सुख मिल है, एक बार तो खावे जुड़ रहा उनको, ये नहीं कहेंगे कि उनका एक बार ही खाने का नियम है, नहीं एक बार ही तो खा, कपड़े तक नहीं है उनके। ऐसा संघ के बारे में दोष लगाना, परस्पर साधर्मी को भी दोष लगा देते हैं। ध्यान रखें अपन कि चतुर्विध संघ भगवान के चतुर्विध संघ के एक अंग है हम श्रावक, तो श्रावक पर भी झूठा आरोप न लगाना, साधु और हारिकाओं पर तो लगाना ही नहीं, चतुर्विध संघ में से किसी पर नहीं लगाना झूठा दोष, जो दोष उनमें है ही नहीं। बताइए वो कह रहे हैं कि ये सब महापुरुष हैं, चतुर्विध संघ महापुरुष है, आप भूल जाते हैं इस चीज को कि अगर हम श्रावक हैं तो हम भी उस संघ के एक मेंबर हैं जो भगवान का चतुर्विध संघ है, और मुनि आरी का श्रावक शाबी का ये चतुर्विध है, और एक और है ऋषि मुनि यति और अंगार, ये मुनियों में ही भेद है। रिद्धिधारी मुनि होते हैं, अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान से युक्त हैं, उनको कहते मुनि। वास्तव में आप हमें मुनि कहते तो हमें लगता है कि हम कहा मुनि कह रहे हैं, हमें मुनि तो अवधि ज्ञान मना पर ज्ञानी को कहते मुनि, और रिद्धिधारी को कहते ऋषि, और दसवें गुण स्थान में छपक श्रेणी में चढ़े उनको कहते यति, और जिन्हें अकेलो घर छोड़ो उनको कहते अनगार, सो अनगार हैं हम। चौथे प्रकार के भेद है, तीन तो होंगे नहीं इस पंचम काल में, न ऋषि आए न मुनि आए न, हाँ यति मुनि बहुत बड़ी चीज है, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान से युक्त जो होते रत्नत्रय के धारी, वैसे रत्नत्रय के धारी सब हैं, सो सबको सामान्य रूप से अपन मुनि कहो तो कहो, साधु कहो तो कहो, लेकिन भेद करोगे अगर तो ऐसा भेद है, और उन पर कोई दोष लगा देना ये हमारी ही दृष्टि की मलिनता है। तो केवली शुद्ध संघ धर्म, अहिंसा धर्म है, और उसमें ये कह देना कि भगवान ने तो हिंसा का भी उपदेश दिया है। एक थीसिस लिखी गई दिल्ली में, उसमें ये सिद्ध किया है कि जैन धर्म में भी मांस भक्षण का शास्त्रों में उल्लेख है और इनके यहां पर भी ये लोग अपने मुंह से काय को कहो अपन छोड़ मन खराब होगा। उसमें ऐसे शोध में उनने सिद्ध किया है। अब उससे उस समय क्या लगा था हमको पढ़ के, दया आई थी कि इनने अपने हाथ से अपनो नरक बना लो। और कछु नहीं, अपन तो दया ही कर सकत। कोई अगर खोटी बात कहे तो अपन के मन में कहा हो चाहिए कि इनने अपने हाथ से अपनो नरक निर्मित कर लो, हमारा तो कछु नहीं, हमने तो सुनी तैसे उन निकाल दी। हमें अश्रद्धान नहीं करना, कोई हमें अश्रद्धान करवावे भी तब भी हमारी श्रद्धा को मजबूत रखना। आज अवसर दूसरे की श्रद्धा के तोड़ने के ज्यादा है, श्रद्धा करवावे के कम है। अश्रद्धा बहुत जल्दी हो जाती, दूसरे भी अश्रद्धा करवा देते, लेकिन श्रद्धा बहुत दुर्लभ। और उस श्रद्धा में दोष लगाने वाले ये मेरे परिणाम हैं, इसलिए मुझे जागृत रहना चाहिए। ऐसी बातें सुन करके जो है और शांत रहना चाहिए कि नहीं, धर्म ग्रंथ में, शास्त्र में या धर्म तो ऐसा कहता ही नहीं है। धर्म तो हमेशा दूसरे प्राणियों की मदद करना ही कहता है। धर्म तो हमेशा भलाई की बात ही करता, उसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं लिखी है। केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्ण वाले, और जो देव लोग हैं, देव कौन कहलाते, सेलेस्टियल बींग्स, स्वर्ग में रहने वाले, वो कहलाते देव। हमारे जैसे उनकी घर गृहस्थी है भैया, लेकिन वे देव पर्याय में हैं और सर्वांग सुंदर हैं। पहली चीज, कोई भी घटिया किस्म का देव भी होगा सर्वांग सुंदर विथ ऑर्नामेंटेशन जन्म लेता है। और इतने ही नहीं, उनके कंठ में अमृत झरता है, कितने ही प्यून भी क्यों ना हो वहां का देवों का, जिसको किलविशिक कहते हैं। किलविशिक एक तरह के वहां के प्यून हैं, नौकर चाकर हैं। देवी अमृत का भोजन करते हैं, और उन पर ऐसा दोष लगाना कि ये देवी देवता तो सुरा पीते हैं, मांस भक्षण करने वाले हैं, सो बोतल चढ़ाया ओके मांस चढ़ा दो। हाँ, ये देवों के ऊपर अवर्णवाद, उनके ऊपर दोष लगाना। देवता तो अमृत भोजी होते हैं, सबसे सुंदर होते हैं, विकृत नहीं होते। वे विक्रिया से अपने रूप विकृत बना लेवे तो बात अलग है, लेकिन वे मांस और सुरा इत्यादि नहीं पीते, मदिरा पान नहीं करते देवी देवता लोग। लेकिन देवी देवताओं के बारे में ऐसा विचार करना खोटा, तो कहते इससे दर्शन मोहनी कर्म बने। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। देखो, कोई बुरा नहीं मानना अगर कोई ऐसा सोचता हो वे तो। हाँ, सब प्रकार के लोग बैठे हैं, अकेले जैनियों को नहीं कह रहे।
हाँ, करते हैं।
हाँ, तो अपन को ये सावधानी रखना, ये अकेले जैनियों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सबके लिए ही है ये। कि अगर ऐसी दृष्टि हमारी है, अरे वे तो इतने बढ़िया हैं, उनको हम ऐसा दोष लगा रहे हैं अपनी लोलुपता की वजह से, काय सोन को चढ़ा दें सोपन को प्रसाद मिल जाए, अपनी लोलुपता है और कछू नहीं, भी भले खावे चाहे नहीं खावे। ऐसा जो है अपने दर्शन मोहनी कर्म को बांधने वाला कर्म है भैया। इससे अब चारित्र मोहनी कर्म के बारे में तो नहीं हो पाएगा, मैं तो सोच रहा था कि दोनों के बारे में कर दूंगा, पर इतना ही रहने दें। जो हमारे दर्शन को, हमारी श्रद्धा को विकृत बनाता है, हमारी दृष्टि को मलिन बनाता है। असल में हम अपने पुरुषार्थ से चाहें तो भैया अपनी दृष्टि को अच्छा बना लें, सब में अच्छा देखना चाहें तो अच्छा देख सकता, और अगर बुरा देखना चाहें तो महापुरुषों में भी बुरा देख लो आप। भैया सर्वगुण संपन्न तो यहाँ कोई नहीं है, बताओ आप भगवान को छोड़ करके कोई सर्वगुण संपन्न है क्या? अकेली भलो ही भलो हो के अंदर, भलो भी है बुराओ भी है, अच्छो बुराओ सबसे मिलके ही आदमी, मनुष्य जो है भले और बुरे दोनों का संयोग है मनुष्य। उसमें हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है अपने भीतर की बुराइयां देखना, दूसरे के भीतर की अच्छाइयां देखना, और अपने भीतर की बुराइयों को निरंतर निकालना और दूसरे की अच्छाइयों को देख करके उसकी प्रशंसा करना, ये अपना फर्ज है। लेकिन हम इस संसार में रह करके और स्वयं तो अपने परिणाम बिगाड़ते हैं और कर्मों को खोरी देते हैं, या किसी और को खोरी देते कि इनने ऐसा कर दिया या हमारे कर्मों ने ऐसा कर दिया। नहीं, हम जैसे अपने परिणाम बिगाड़ना और सुधारना चाहें हमारे हाथ में है। एक व्यक्ति थे, वो राजा के मंत्री थे, वो हमेशा जो है ये कहा करते थे कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब बताओ, उनको कहीं कोई चीज जो है बुरी जानी नहीं पड़ती थी, ऐसा उनका स्वभाव था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के साथ में घूमने गए, तो राजा को कोई झाड़ी में से निकलते समय कांटा लग गया, कांटा लग गया तो उंगली में बहुत खून निकलने लगा। तो अब राजा ने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने कही कि राजन अब लग गई जो भी होता अच्छे के लिए ही होता। राजा को बहुत गुस्सा आई कि भाई जी हर हर समय तुम्हारा यही, अब हमें तो इतनी चोट लग गई है तो मैं लगता गया अच्छे को ही होता सब। बहुत इतनी तीव्र गुस्सा आई राजा को, देखो उसके पर मैंने इतना, उस समय हम क्या विचार कर सकते थे, हमारे असाता का उदय आ गया या कि ये झाड़ियां यहां से हटवाओ, हम राजा हैं हमें क्यों लग गई, या कि हमारी सेना को दोष दे। वो मंत्री क्या कह रहे हैं कि महाराज क्यों व्यथित हो रहे, अपने किसी कर्म का उदय है और जो होता है सो अच्छे को होता है, निकल गो कर्म हतो उदय में आके चलो गो। इतनी शांति से वो उपदेश जैसा दे रहे हैं, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आई और कहने लगे पास में ये कुआ था सुकेला उठा के फेंक दो इसको मंत्री। राजा लोगों का ऐसा ही रहता था, तीव्रता आ गई एकदम तो फिर नहीं देखते आजू बाजू। आज भी ऐसे राजा लोग हैं अपने घर के, हाँ जी पूरे संसार के रहते अपने घर के राजा आज भी हैं, उठा के फेंके बारे देख लो हमने सोई, हाँ संसार बहुत गौर से देखा हमने। तो फिकवा दिया उसको उसके अंदर और चले राजा, वे तो अपने घूमने निकले थे जंगल में वन विहार के लिए निकले थे। आगे जा करके और इतने घने जंगल में पहुंच गए कि सब सेना पीछे पीछे रह गई, यहां वहां हो गई और राजा पड़ गए अकेले। और वहां पर कुछ भील थे, उनने राजा को पकड़ लिया, हुई हो तुम दुनिया भर के राजा, हमारे तो नहीं, हमारे तो हमैया है राजा। भीलों ने पकड़ लिया और लेके गए कि ला इतना सुंदर व्यक्ति अपन को मिलेगा क्या, अपन को आ जाए तो देवता को प्रसन्न करने के लिए और चढ़ाना था, इतना सुंदर व्यक्ति ले गए उसको वहां पर। लेकिन जैसे ही उनके जो वहां चढ़ाने के लिए राजा को और कहा कि गर्दन नीचे रखो, उतने में ध्यान चला गया कि अरे अंगुली तो कटी है और अंगुली कटी है तो ये अंग भंग हो गया, इस काम का नहीं, भगाओ। उस कटी अंगुली की वजह से उतार करके नीचे कर दिया और वापस भेज दिया। अब राजा क्या सोच रहे कि अच्छी कटी थी अंगुली, प्राण बच गए। परिणाम हम कितने जल्दी बिगाड़ लेते हैं, और उस समय अगर हम संतोष धारण, हमें कहना यही है जरा जरा सी बातों पर अपने परिणाम हम बिगाड़ते हो, कर्मों को दोष देते और वापिस लौट के आकर के और जल्दी से निकालो तो मंत्री जी को निकालो, चोट ज्यादा तो नहीं लग गई, हमने पटकवा दिया था। मंत्री जी को ठीक है थोड़ी तकलीफ तो हुई, दिन भर उसमें पड़े रहे बेचारे, लेकिन बाहर निकले तो कहले मंत्री जी आपकी बात सही थी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई फिर भी हम आए। कहले क्या बात, कहले लेकिन हमने आपको ये में पटक दो, ये में कहा अच्छो भाव। कहले महाराज जो होता अच्छे को होता, आपके संगे होते तो आप तो बच जाते, हम तो फंस ही जाते। आपने अच्छो करो कि हमें जो कुछ होता है अच्छे के लिए, बताइए कितना संतोष है, कितना परिणाम अपन अपने संभालना चाहें। ये उदाहरण था, अभी सुबह सुबह मुझे और पढ़ने में आया, मैंने कहा देखो इसी से अपन को शिक्षा लेनी चाहिए और अपने परिणामों में हमेशा कि ठीक है बुरा भी हुआ तब भी शायद कुछ अच्छा उसमें से बेहतर मैं निकाल लेऊंगा, उसमें मुख्य बात यह है। इसी तरह हमारे विचारों में निर्मलता आए। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। Bye. आवाह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तमनाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो पर भास वेखो भानु शिव कानी है अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्य हो रे आनी है वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुमणी मस्तक नमो सदा देत होंदो हे दिन वाणी भारती जपो दिन रैन जो तेरो शरणागहे सो ग्रहे मुनि राज्य माधव ओम विष्णु पुरुष नाथ जी महाराज की पावन श्री चरणों में अनर्घ प्राप्त है हरगम रूप बाबू जी।